मुख्य समाचारों में सिडनी बोर्डिंग हाउस में आग लगने के मामले में एक व्यक्ति अदालत में पेश हुआ। अधिकारियों का कहना है कि विक्टोरिया में ओमिक्रॉन का एक नया संस्करण तेजी से फैल रहा है और एलेक्स डिमोर सीधे सेटों में टॉमी पॉल को हराकर इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट के अगले दौर में। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। रक्षा मंत्री पीटर डॉटन का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी इन्वेजन एक गलत अनुमान बन गया है, जिसके कारण राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पतन हो सकता है। सिडनी में यूएस स्टडी सेंटर को संबोधित करते हुए श्री डॉटन ने यह भी कहा कि चीन यूक्रेन में संघर्ष को अपनी स्वयं की आक्रमणता यानी एग्रेशन को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में कर सकता है। श्री डॉटन का कहना है कि यूक्रेन में रूसी इन्वेजन दुनिया के बारे में श्री पुतिन के विकृत दृष्टिकोण के रूप को दर्शाता है।
He wants more than anything to restore an imperial Russian empire with himself in absolute control. That much is totally clear. A successful democratic Europe-leaning Ukraine has no place in his utterly warped and cynical worldview. And so he has set out to destroy it. It's becoming clear that Putin's Ukrainian gamble has been a miscalculation that may very well destroy the man himself.
रक्षा मंत्री का ये भी कहना है कि यूक्रेन के समर्थन के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया को रूस के साइबर हमलों का अधिक सामना करना पड़ सकता है। एक व्यक्ति जिस पर पुलिस का आरोप है कि उसने मंगलवार रात सिडनी के एक बोर्डिंग हाउस में आग लगा दी, वो अदालत में पेश हुआ। इस आग से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि 45 वर्षीय रिचर्ड हॉटरन उस समय घर का निवासी था। वो सेंट्रल लोकल कोर्ट के सामने पेश हुआ। उस पर हत्या के 3 मामलों और आग से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का एक आरोप लगाया गया। हालांकि श्री हॉटरन ने कोई औपचारिक आवेदन नहीं किया, जमानत औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दी गई है। उसे 22 मई को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। विक्टोरिया में अधिकारियों का कहना है कि टीकाकरण का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन का एक नया उपसंस्करण प्रमुख स्ट्रेन बन रहा है। विक्टोरिया ने सप्ताह दर सप्ताह कोविड-19 मामलों की संख्या में 10% की वृद्धि देखी है, जिसके कारण सरकार ने सर्दियों से पहले तीसरी खुराक के टीकाकरण दरों को बढ़ाने के अपने प्रयासों को दुगुना कर दिया है। लगभग 62% विक्टोरियन वर्तमान में पूरी तरह से टीकाकृत हो चुके हैं। कोविड-19 कमांडर जेरोइन वीमर का कहना है कि नया स्ट्रेन बढ़ती संख्या में दिखाई दे रहा है और वैक्सीन की तीसरी खुराक नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी बनी हुई है।
If we look at the sequencing we're doing, we're now seeing BA2, the sublineage, in around half of our wastewater sequencing results is now coming through. So we're seeing an increasing prevalence of the BA2 sublineage both here and we understand in other states across Australia as well. So we will expect to see case numbers continuing to trend upwards over March and April as people spend more time indoors, as we mix more. So it's really important that everybody now uses this time to get themselves protected for their third dose.
नॉर्दर्न टेरिटरी सरकार ने घोषणा की है कि वो अपनी एलिस स्प्रिंग संगरोध सुविधा को बंद कर रही है। 139 बेड की टॉड रिवर सुविधा जो मैक्वायर होटल में है, वो 11 मई से बंद हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री नताशा फाइल्स का कहना है कि कोविड अब तक देखे गए शुरुआती मामलों से बहुत अलग है, जब लोगों को बीमारी होने पर 2 सप्ताह के संगरोध की आवश्यकता थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस निर्णय का सकारात्मक आर्थिक प्रभाव रहेगा। इससे मध्य ऑस्ट्रेलिया में आने वाले आगंतुकों के लिए स्थानीय पर्यटन आवास पूल में दर्जनों कमरे वापस उपलब्ध हो जाएंगे। बाढ़ से प्रभावित कुछ निवासियों को सप्लीमेंट्री फंडिंग से बाहर किए जाने के बाद फेडरल लेबर ने डिजास्टर रिलीफ भुगतान को उत्तरी नदियों के क्षेत्र में विस्तारित करने का आह्वान किया है। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने डिजास्टर रिकवरी पेमेंट स्पेशल सप्लीमेंट नाम के एक नए भुगतान की घोषणा की है, लेकिन केवल क्लेरेंस वैली, रिचमंड वैली और लिस्मोर स्थानीय सरकारी क्षेत्रों के निवासी ही इसका पात्र हैं। क्षेत्रीय सेवाओं के लिए लेबर के प्रवक्ता जेसन क्लेयर का कहना है कि बलीना, ट्वीट और बायरन शायर काउंसिल्स में स्थानीय लोग भी बाढ़ से प्रभावित हुए, तबाह हो गए थे और उन्हें भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी।
There are hundreds and hundreds of people who are pensioners. They're not rich. They've lost everything, and the Prime Minister says they don't meet the criteria for an extra $2,000. Come on.
पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने इस बात को खारिज किया है कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में शनिवार को होने वाले मतदान में लेबर सरकार जीतने की मजबूत स्थिति में है। श्री हावर्ड एडिलेड में सरकार की सबसे अधिक मार्जिनल सीट न्यूलैंड में प्रचार अभियान के दौरान थे और उन्होंने ये टिप्पणी प्रीमियर स्टीवन मार्शल के साथ प्रचार अभियान के दौरान की। उन्होंने कहा कि एक नया जनमत सर्वेक्षण जिसने लेबर को अपने आप में जीतने के लिए एक मजबूत कमांडिंग स्थिति में रखा है, उसकी व्याख्या कुछ सावधानी के साथ की जानी चाहिए। श्री हावर्ड का कहना है कि दक्षिण ऑस्ट्रेलियन लिबरल सरकार को कमजोर बताना जल्दबाजी होगी क्योंकि मतदाता इसके मजबूत आर्थिक प्रदर्शन से प्रभावित होंगे।
It always produced some tremendous federal representatives that I dealt with. But the truth is that Stephen Marshall has turned around South Australia's economy.
Newland 2% या उससे कम के अंतर से लिबरल के चार मजबूत खेमों में से एक है। यूक्रेन पर रूसी इन्वेजन के बारे में यूरोपीय नेताओं के साथ आमने सामने बातचीत के लिए अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अगले सप्ताह यूरोप की यात्रा करेंगे। व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में बोलते हुए प्रेस सचिव जेन साकी का कहना है कि राष्ट्रपति बाइडन ने नेटो सहयोगियों के लिए आयरन क्लाड प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करने और ये आकलन करने की योजना बनाई है कि रूस के संबंध में गठबंधन की क्या स्थिति है। साकी ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य और मानवीय सहायता में 13.6 बिलियन डॉलर प्रदान करने वाले बजट बिल पर हस्ताक्षर करने के बावजूद वहां लड़ाकू जेट देने और नो फ्लाई जोन को लागू करने में संकोच है।
The president has to look at decisions that are made through the prism of what is in our national security interests and global security interests. And he continues to believe that a no-fly zone would be escalatory, could prompt a war with Russia. I don't believe there's a lot of advocates calling for that at this point in time from Capitol Hill, but we certainly understand and recognize that is still a call from President Zelensky.
नॉर्दर्न टेरिटरी एंटी करप्शन मॉनिटरिंग सर्विस एक ऐसे पुलिस कर्मी की जांच और गिरफ्तारी की जांच शुरू कर सकती है जिसने एक आदिवासी किशोर को घातक रूप से गोली मार दी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र आयुक्त माइकल रिचर्स का कहना है कि वो इस मामले पर विचार कर रहे हैं क्योंकि कांस्टेबल जाचारी राल्फ को पिछले सप्ताह शुक्रवार को 9 नवंबर 2019 को हुई कुमांजई वॉकर की हत्या का दोषी नहीं पाया गया था। कांस्टेबल राल्फ पर हत्या का आरोप लगाया गया था जब उन्होंने एलिस स्प्रिंग के उत्तर पश्चिम में यूएनडुम के दुरुस्त स्वदेशी समुदाय में गिरफ्तारी के असफल प्रयास के दौरान मिस्टर वॉकर को 3 बार गोली मारी थी। नॉर्दर्न टेरिटरी में 250 अमरीकी सेना के सैनिक पहली बार तैनात होंगे। मौजूदा व्यवस्थाओं के तहत केवल यूएस मेरीन को ही डार्विन में तैनात किया जाता है और इस वर्ष नॉर्दर्न टेरिटरी में शुष्क मौसम के दौरान लगभग 2,200 अमरीकी सैनिक और महिलाएं तैनाती का हिस्सा होंगी। लगभग 1,000 पहले ही आ चुके हैं। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए यूएस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। यूएस कर्मी ऑस्ट्रेलियन बलों के साथ प्रशिक्षण लेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो इस क्षेत्र में संकटों का जवाब देने में सक्षम हैं। इनमें मानवीय सहायता, आपदा राहत, निकासी मिशन, अमरीकी दूतावासों को फिर से लागू करना या सैन्य अभियान शामिल हो सकते हैं। और भारत में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले के पक्ष में निर्णय लिया है। वहां प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि गुमराह हुई मुस्लिम लड़कियों का दिल जीतने की कोशिश की जाएगी जो इस कदम के खिलाफ हैं और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री अराग्य ज्ञानेन्द्र ने कहा कि पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी तरह के एहतियाती कदम उठाए हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 72 सेंट और भारत के 55 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, टेनिस में एलेक्स डिमोर ने टॉमी पॉल को सीधे सेटों में 7-6, 6-4 से हरा कर दक्षिण कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स मास्टर्स में अगले दौर में प्रवेश किया है। इससे पहले निक कैरियोस दुनिया के 8वें नंबर के कैस्पर रूट को 4थे दौर में हरा कर पहले ऑस्ट्रेलियन बने थे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बृहस्पतिवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। मेलबर्न में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। होबार्ट में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। सिडनी में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। ब्रिस्बेन में हल्की फुल्की बौछारें, अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और डार्विन में बौछारों या तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।